किया है, इतराज करो, कहो आपने ये काम क्यों कहा, आप बताओ। हमने कहा मैं बताऊंगा। क्यों? इससे बेहतर है कि अपने सीनों में लेके बैठे रहे, जबान मिलाओ। तुम्हारे बाप के पास अगर दलील है तो दलील देगा, नहीं है दलील गलती तस्लीम करेगा, मैंने गलत दिया अब नहीं करूंगा। बोलो मसल, मेरे बच्चे पूछते हैं मुझसे, कहते हैं आपने फला जगह के ऊपर ये मौका अख्तियार किया था, क्या वजह थी? अच्छा, वो शेयर कर रहे हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। क्यों? कल वो जाते हैं उनसे, उनको सुनना पड़ता है, ये जैदी साहब के बेटे हैं, तो जैदी साहब की सारी गलतियां भी तो उनको उठानी पड़ती है बेचारों को, तो उनका हक नहीं है कि उनसे पूछेंगे भाई तुम ये कर क्यों रहे हो, जिसके लिए तुम सिप्टा में उठानी पड़ जाती है। उनका हक है, उनको ये सवाल करने की गुंजाइश मिलनी चाहिए। मुझे भी एक फायदा है, मुझे एक फायदा है। मतलब कोई मुझसे कहता ना मौलाना साहब एक जाती सा सवाल करना इजाजत है, मैं कहता हूं हाँ 100% इजाजत, आप करो साहब जितना जाती सवाल करना है करो। क्या फायदा है भाई? फायदा यह कि अगर मैं कोई गलत कर रहा हूं तो मुझे बता देगा, अगर मेरे पास कोई दलील नहीं है तो कम से कम मेरे सामने तो वाजे होना चाहिए ना कि जय साहब आपके पास दलील नहीं है, आप दिला दें मैं कोई काम कर रहा हूं। और अगर मेरे पास कोई दलील हुई तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई मेरी दलील ये है। तो आप अपने बच्चों को सवाल करने दें, हद तक अगर आपके बारे में कर रहे हैं, ताकत दे उनको ये। अगर आपने ताकत नहीं दी तो क्या होगा, उनके सीनों में सवाल बनते रहेंगे, आप जगह नहीं देंगे, बाद में नाउज़ुबिल्लाह ताला बगावत करेंगे, बगावत करेंगे, फिर आप नहीं संभाल पाएंगे उन्हें। शुरू से अपने बच्चों को ये गुंजाइश दे दें कि बेटा आपको मेरे बारे में कोई सवाल करना मुझसे करें, मैं जवाब दूंगा। टाइम निकालें इसके लिए, मसलन आपके पास डेली शेड्यूल में टाइम नहीं होगा, मैं खुद ट्रैवलिंग इतनी करता हूं, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कभी अपनी जिंदगी में वीकेंड्स निकालूंगा, उनके भी वीकेंड्स हो मेरे भी वीकेंड्स हो, मैं कॉड ट्रिप करता हूं। मैं कहता हूं ऐसा करो गाड़ी में बैठा, हम लोग लंबी ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं। गाड़ी में लंबी ट्रैवलिंग में जाने का फायदा क्या है? अब तो बात करनी पड़ेगी ना, अब क्या करना है, गाड़ी में तीन बंदे चार बंदे, अब किससे बात करोगे, अब तो इन्हीं से बात करनी पड़ेगी ना। फिर मौका है, जितना डिस्कस करना है डिस्कस करो, मौका निकालें। आपको बच्चों की तरबियत करनी है और ये आपके लिए अहम है तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। बच्चों के साथ बैठिए, इनके साथ डिस्कशन कीजिए, इनके मसाइल को समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे के मसाइल में शेयर करें उसके साथ। तरबियत के ऊपर बात हो रही थी ना, गच्चे तौहीद को मैं लेके चला था, बच्चों के मसाइल में शेयर करें उनके साथ। शेयर कैसे किया जाता है? बच्चा स्कूल से आया है, आप भी थके हुए आए, लेकिन आप क्या करें, दो चार मिनट निकाल के उससे पूछे बेटा क्या हुआ स्कूल के अंदर। वो शुरू में कहेगा कुछ नहीं हुआ, आप लोगों ये तो नहीं हो सकता भाई कुछ ना हुआ, कुछ तो हुआ होगा, क्या हुआ? शुरू में शायद आपके साथ इतना फ्रेंकली बात नहीं करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करेगा, आहिस्ता आहिस्ता शेयर करेगा, ये मसला हुआ मैंने, मतलब आपने कहीं उसको कुछ चोट वोट लगी हुई देखी, मूड खराब देखा है, ना छोड़े उसको, दोस्ती के माहौल में रहते हुए, ना कि वो आप उसकी अथॉरिटी बन जाए, हाँ बताओ क्या हुआ था, वो तो भाग देगा। आप उसे दोस्ती करें, दोस्ती करते हुए उससे पूछें क्या हुआ था, आपको पता चलना चाहिए। उसके बाद क्या करें, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। क्यों? उसको लगे कि आप उसकी जिंदगी में शेयर कर रहे हैं, उसको सिर्फ ये ना लगे कि ये मेरा ATM है, जितने पैसे निकलवाना है यहां से निकलवा लो, बाकी मामला खत्म। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के ATM है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बैंक्स और ATMs बने हुए, क्रेडिट कार्ड्स बने हुए, इनसे पैसा मिलता है, इतना पैसा आ जाता है, मामला खत्म हो गया। आपको इससे ज्यादा होना चाहिए, आपको उसको अपना पार्टनर बनाना चाहिए जिंदगी के अंदर, आपके पार्टनर के तौर पर काम करे। बहरहाल मैंने आपका वक्त लिया, खुद आपको हिस्सा की अजमत पर अपनी औलाद को उनके रास्ते पर चलाने की तरबियत की नियत से दुरूद भेजे मोहम्मद वाले एक सवाल है मेरे सामने, मैं इस सवाल का भी जवाब देता हूँ, लेकिन मैं आपसे पहले एक सवाल करता हूँ, ये जो आपने दुरूद पढ़ा इसकी जरूरत किसे है, उन्हें या हमें? बिला शक कुछ उन्हें जरूरत है या हमें जरूरत है? हमें जरूरत है। अच्छा आपको क्या जरूरत है? आपने तो इसमें कुछ मांगा ही नहीं, सही? आपने अल्लाह से क्या मांगा? ऐ खुदाया उन पर दुरूद भेज दे। अपने लिए क्या मांगा? कुछ भी नहीं मांगा, तो फिर आपको जरूरत थी और आपने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। हाँ मैं अर्ज करूंगा, आपने असल में अपने लिए मांग लिया है, क्या मांगा है? سے کہا خدایا میرا تعلق تیرے محبوب بندوں سے ہے، میرے دل میں ان کی محبت ہے، باقی خدا خود جانتا ہے. آپ نے اپنے درود سے خدا کے سامنے ایک چیز ثابت کی ہے، خدا جو تو نے مخلوق اول خلق کی تھی نا، جو انسان کامل خلق کیا تھا، جس کو آخری نبی بنا کے بھیجا تھا، میں اس کا اور اس کی اولاد کا ماننے والا ہوں. آپ نے اپنے درود سے یہ کہا ہے. ضرورت کس کو تھی؟ مجھے. صاف بات صحیح ہے. سوال یہ، جس ذات کو حاجت عبادت نہیں، اس کا عبادت کی خاطر تخلیق انسان کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں خدا نے خلق کیا کہ ہم بندگی کریں؟ حاجت اس کو ہے یا مجھے؟ مجھے. اس نے کیوں خلق کیا؟ ہاں اس کو حاجت اس کی نہیں ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے، اس کو خواہش اس کی ہے کہ میں کچھ ناقصوں کو کمال پر پہنچاؤں، اس لیے اس نے خلق کیا. ایک دفعہ ایک دولت مند ہوتا ہے، بہت دولت مند ہوتا ہے، اس کو پیسے کی اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، پیسے کی اب کوئی ضرورت نہیں رہتی. اب دو ہدف ہو سکتے ہیں، اب اگر پیسہ کمائے، اب اگر کارخانہ لگائے، اب اگر بزنس کرے، دو ہدف ہو سکتے ہیں. یا تو لالچ اس کو مار رہی ہے، وہ لالچ اس کو مار رہی ہے، ایک اور ہدف بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اتنا کمایا ہے، بندوں کے رزق کی تقسیم میں اپنی دولت کو استعمال کیوں نہ کروں؟ کارخانے لگاؤں گا، 400 بندوں کو روزگار دوں گا. میں کماؤں یا نہ کماؤں، یہ تو کچھ کما لیں گے نا، یہ بھی ایک ہدف ہے. خدا یہ کائنات خلق نہ کرے یا کرے، اس کی ذات کبریائی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ناقص خلق کیے ہیں، کمال کا راستہ سکھا رہا ہے. کہتا ہے تم بھی کامل بنو. اس کو عطا پسند ہے، اس کو عطا پسند ہے. بس اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ چاہتا ہے کچھ لوگوں کو عطا کرے. جود و سخا اس کی عادت ہے، اور اس کی ذات کی، اس کی صفات کی نتائج یہ ہیں کہ مخلوق کو عطا کرنا چاہتا ہے، ہر صورت میں عطا کرنا چاہتا ہے. اگر میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ اجمالاً کہہ دوں اور اس کی فی الحال تفسیر نہ کروں، پھر بعد میں کبھی کروں، جہنم بھی عطا الہی ہے. آپ کہیں گے جہنم بھی عطا الہی ہے؟ ہاں جہنم بھی عطا الہی ہے. وہ کیسے؟ جہنم میں ڈال کر کچھ لوگوں کے گناہوں کو ختم کر رہا ہے تاکہ میری رحمت کے قابل بن جائیں. وہ خدا ہمیشہ عطا کرنا چاہتا ہے. یہ بڑی باریک معاملہ ہے. ہمیشہ عطا کرنا چاہتا ہے، ہر جگہ پر چاہتا ہے عطا ہوتی رہے. کم از کم، کم از کم. بس آپ کہیں گے کچھ لوگ خالقینا فیا ہے، وہاں عدل عطا کرنا چاہتا ہے، ظلم نہیں کرنا چاہتا. ہمیشہ کچھ نہ کچھ عطا ہے اس کی. آپ اپنے زندگی پہ غور فرمائیں، آپ اور میں عطا الہی کے سمندر میں غرق ہیں. زندگیوں پہ غور کریں. بس کیوں خلق کیا اس نے، اور عبادت کو تخلیق کائنات کی وجہ کیوں بتائی؟ کیوں خداوند متعال فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ کیوں یہ فرمایا؟ میں نے عرض کیا کیوں وہ چاہتا ہے بندگی کریں، اور بندگی کے بعد کیا کریں گے؟ ان کو کمال حاصل ہوگا، اور یہ وجہ خلقت کائنات. درود پہ محمد و آل محمد. لکھا ہے کہ نمبر ایک، اللہ پر، اچھا نمبر کا مطلب نہیں ہے، صرف ایسے ہی لکھا، اللہ پر توکل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے صاحب، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی نہ اٹھاؤں اور نہ پیوں اور کہوں میں خدا پہ توکل کروں گا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. میں اٹھوں گا، کوشش کروں گا، پانی کی جستجو میں جاؤں گا، اب توکل کروں گا خدا پہ. خدا ہے، نتیجہ تیرے ہاتھ میں، جستجو میری ہے، نتیجہ تیرا. البتہ میں جس طاقت سے جستجو کر رہا ہوں وہ بھی تیری دی ہوئی ہے. یہاں پہ کوئی نئی چیز نہیں جو میں ایجاد کر سکوں. میں کس کا ہوں؟ میں بھی تیرا ہی. توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ، میں کوشش کروں گا، دینے والا خدا، اپنے اوپر اعتماد نہیں کروں گا. یہ توکل کے خلاف ہے. اپنے اوپر اعتماد، ہاں اپنے اوپر اعتماد ایسے، وہ یہ کہ جناب علی میں نے ایک بزنس کیا، सारी चीजें कंट्रोल करनी, सारा पैरामीटर्स मेरे कंट्रोल में। अब कोई मुझसे पूछे भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कहता मैंने सारे काम कर लिए, अब ये चलेगा ही चलेगा, अब ये थोड़ा सा गलत हो गया है। आप खुदा को बीच में निकाल रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती करती है। अब इम्कान है कभी इस बात का है कि जब आप समझ रहे होगे कि ये चलेगा ही चलेगा, उस वक्त ये बैठेगा। तवक्कुल करो हर चीज में, हत्ता उस चीज में जिसके अंदर कोई शुभा ही नहीं है कि ये मेरा है, उसमें भी तवक्कुल करो। सिर्फ उस चीज में मत करो जिसके अंदर शुभा मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मैं कहूं आप खुदा पे तवक्कुल करता हूं, नहीं तवक्कुल वहां करो जहां पे सबका पता है कि सब कुछ कैसा है, तब भी खुदा पे तवक्कुल करो। क्यों? मेरे हाथ में सारे पैरामीटर्स नहीं आ सकते, मुझे नहीं पता कौन सी चीज कैसे होगी। ये तवक्कुल खुदा के ऊपर तवक्कुल करें इंशाल्लाह। दूसरी बात उन्होंने कही अल्लाह की मारिफत कैसे बढ़ाना। अब ब्रैकेट में लिखा है रीडिंग बुक्स, नहीं सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं। मैंने एक बार गलत आपकी खिदमत में अर्ज की, दूसरों से सीखो, वाकयात से सीखो, जिंदगी से सीखो, अपनी जिंदगी से सीखो। मिसाल के तौर पर हम लोगों की जिंदगी में खुदा मुताल अपने जज्बे बहुत दिखाता है, उन जज्बों को देखते हुए खुदा की मारिफत लेने की कोशिश करना। देखो ये खुदा ने कैसे कर दी, कितनी दफा मेरे साथ जिंदगी के अंदर हुआ है, मैंने किसी चीज की आरजू की, ख्वाहिश की, सख्त ख्वाहिश की खुदा के सामने, चंद साल के बाद खुदा से कहा खुदा है तेरा शुक्र है तूने मुझे नाकाम किया था, तू अगर मुझे कामयाब कर देता तो मैं गर्क हो जाता, तेरा शुक्र है। खुदा संभाल रहा है। अपनी जिंदगी में गौर करें, आपकी जिंदगी में पता नहीं कितने पॉइंट्स होंगे मार्फत खुदा को बढ़ाने के। खुदा की रज़ाकियत को देखो, खुदा की तरकीब को देखो, खुदा की तदबीर को देखो। बहुत इंसान हैरान रह जाता है खुदा की तदबीर अजीब गरीब है, कैसे चीजों को यूं करेगा इधर होगा उधर होगा, एंड में आपको नजर में आएगा अच्छा ये सब खुदा ने प्लानिंग की हुई थी, ये इस वजह से हुआ। मैं आपकी खिदमत में अर्ज नहीं कर सकता कितनी दफा मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखा, और हम सब की जिंदगी में हो रहा है, हम सब अपनी जिंदगी में वो पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अलबत्ता हम में से बास के साथ मुश्किल होती है, जब वो ऐसे पॉइंट निकालते हैं तो अपने आप को वलीउल्लाह समझने लगते हैं, भाई ये वलीउल्लाह होने का मसला नहीं है, ये खुदा की इनायत है, वो सबके ऊपर बरसा रहा है, मैं और आप भी उसका एक हिस्सा है, इसमें कोई विलायत विलायत का मसला नहीं है कि मैं आपको वलीउल्लाह बन रहा हूं यहां पर, सबकी जिंदगी में ऐसे। तो इन्होंने पूछा मारिफत कैसे बढ़ाएं, खुदा के ऊपर सोचे, खुदा के गौर कर। एक छोटा सा वाक्य आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, पहले भी बहुत दफा अर्ज कर चुका हूं दूसरी जगहों के ऊपर। एक दफा मैं कहीं जा रहा था अपनी फैमिली को लेकर, मैं अर्ज करूंगा मैं अपनी जिंदगी से सीखना चाहता हूं, मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें पढ़ने के लिए शायद ताकत भी कम है और वक्त भी शायद ना हो, लेकिन मेरी जिंदगी गुजरनी है तो मुझे लगा ये किताबें खुदा है पढ़ने के लिए, इसे पढ़ पढ़ के सीख सकता है इंसान। तो मैं एक दफा अपने घर वालों को लेके जा रहा था, सारे घर वालों को लेके गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी भी छोटी सी थी और रास्ता भी लंबा था, कोई 10-12 घंटे का रास्ता था, और मैं डर रहा था कि मेरी गाड़ी अगर खराब हो गई रास्ते में तो होगा क्या, गाड़ी जो भी बहुत पुरानी गाड़ी है, तो मैंने कहा खराब हो गई तो बताइए सब लोग खड़े हो जाएंगे हम लोग, फिर पाकिस्तान में सिक्योरिटी का भी इशू होता है, कोई गाड़ी स्नैच करके ले गया तो क्या होगा। अब मैं अजीब परेशान होने लगा। अच्छा अब मुश्किल मेरे साथ ये है कि अगर मैं किसी चीज का इरादा कर लेता हूं तो पीछे हटना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मैं इरादा बहुत मजबूती से कर रहा होता हूं। अब मैंने इरादा तो कर लिया और पीछे से अवहम ख्याल मुसलसल तंग किए चले जा रहे हैं कि भाई तुम क्या करो। मैंने कहा अच्छा ऐसा है मैं तमाम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। मैकेनिक के पास गया, मैंने कहा देख भाई मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, कम से कम 3000 किलोमीटर मैंने इसको आना है और जाना है, तुम 3000 किलोमीटर के काबिल इस गाड़ी को बनाओ कि इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मेरा मामला मैं बच्चों को लेके जा रहा हूं। उसने कहा देखो भाई मैं तो एक इंसान हूं, मैं जितना कर सकता हूं मैं करूंगा, लेकिन बहरहाल गाड़ी पुरानी है। मैंने कहा लो भाई ये तो मैकेनिक भी मुझे डरा रहा है। मैंने कहा नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तो देखे जाऊंगा। साहब अगले दिन निकलना था, रात को मैंने नमाज पढ़ी, मैंने खुदा से कहा खुदा मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर लिया, लेकिन मैंने जाना है, अब तू जाने और तेरा काम जाने, अगर खराब हो गई मैं खड़ा हूं तू मालिक है, कोई आगे ले गया गाड़ी मैं अकेला खड़ा हूं तू मालिक है, जो कुछ भी है तू मालिक है, मैं तुझ पर इंसाफ कर पाऊं, मैं और कुछ नहीं कर सकता। सही, मैं गाड़ी लेके गया, पूरी ट्रेवलिंग की, घर वापस आया, घर वापस 3 दिन के बाद घर वापस आया, 3 या 4 दिन के बाद फिर दोबारा नमाज पढ़ी। मैंने कहा मालिक मैंने तेरे ऊपर एतमाद किया, तूने कितना अच्छा संभाला, मुझे कोई मुश्किल नहीं थी। फिर मेरे जहन में अचानक एक बात आई, मैंने कहा मैं कितना पागल हूं, मुझे सारी जिंदगी यही करना था। मैं एक छोटे सफर के ऊपर अल्लाह के सामने गिड़बिड़ा रहा हूं और जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं कहीं और पे। मुझे सारी जिंदगी यही करना था कि मैं अपने काम को करूं लेकिन इंहसार खुदा पे करूं। क्यों मैंने जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, गाड़ी के बारे में सोचता रहा कि मैं इसको मैकेनिक के पास लेके आऊं, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन मालिक खुदा है तो भाई सारी जिंदगी का मालिक कौन है, उसमें क्यों नहीं सोचता फिर मैं। तो मुझे अपने ऊपर बड़ा अफसोस हुआ कि देखो मैंने इतनी सादा सी बात अपनी जिंदगी में क्यों नहीं समझ में आ रही। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं ना, इससे मैं क्यों अर्ज कर रहा हूं, इसका एक फायदा मुझे दोबारा याद आया कि याद करो तो खुदा पे इत्मीनान करना है तुम्हें, कि क्यों तुम बंदों के ऊपर उन चीजों के ऊपर इत्मीनान करना शुरू कर देते हो। यह हम लोगों के जहन से निकल जाता है, कोई हो जो हमें बार बार याद दिलाए, मैं खुद अपने आप को याद दिलाऊं कि हमें खुदा पे इत्मीनान। इस तरह मारफत खुदा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती। तलब करें खुदा उन, खुदा आपको हर चीज मुफ्त में देगा, अपनी मारिफत मुफ्ते में नहीं देगा, इसकी कीमत लेगा। ये मुफ्त में नहीं मिलेगी, आपको दौलत मुफ्त में मिल जाएगी, आपको दुनिया की हर चीज मुफ्त में मिल सकती है, ये नहीं मिलती। कि बहुत है, बहुत कुछ है, दुनिया बिल इत्तेफाक वल आखिरतो बिल इक्तिसाब, या दूसरा जो जुमला है, दुनिया तो आपको इत्तेफाक से मिल सकती है लेकिन आखिरत कैसे मिलेगी, वो इत्तेफाक से नहीं मिलती, इक्तिसाब कसब करना पड़ता है, वो कसब करनी पड़ती। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्होंने सवाल किए, बीच का सवाल किया, मारिफत का लफ्जी मतलब क्या है, पहचानना, इरफान, उर्फ, मारिफत, आरिफ, ये सब मारूफ, ये सब एक ही रूट्स के हैं। रूट क्या है, एन रा फा, इसका मतलब होता है पहचान, पहचानना। इन्होंने एक लफ्ज़ पूछा है, खुदा और इमाम की मारिफत का मफहूम क्या है। ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, ये बहुत ही अजीब अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसका एक वाक्य सुनाता हूँ, सही वो भी एक और बंदे की, तो मैं शायद खुदा ने मुताला नसीब किया मेरी जिंदगी में, बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब एक दफा मैं जहां रहता हूँ उसके नजदीक एक इलाका है, वहां पे हमारे ये पारा चनार की और कुहाट के दोस्त काफी रहते हैं, अजीब सा नाम है वैसे उसका, पहलवान बोट कहते हैं उसको, कभी कोई पहलवान रहा होगा मेरे घर में वहां में। बार मैं वहां पे एक दफा गया मंजिश पढ़ने के लिए, मंजिश पढ़ी, उसके बाद नजर हुई मैं सफान में बैठ गया। एक आदमी मेरे पास आया, उस इलाके में काफी सीनियर है, वो PIA में काम करता है, बराबर में एयरपोर्ट वो काम करता है। वो मेरे पास आया, रात का वक्त था, वो आया पूरा बैठा भी नहीं, जैसे आधा बैठा हुआ, वो आया मेरे पास, कहना मौलाना मुझे जल्दी में किसी ने एक सवाल कहा है, वो आपसे पूछना है, आप मुझे जल्दी में जवाब दीजिएगा, मुझे ड्यूटी पे जाना है। अच्छा, पहले तो मैंने सोचा कि मैंने कहा भाई तू ड्यूटी पे चला जा, कल तफसील से आ जाएगी, जल्दी जल्दी में क्या सो रहा था। फिर मैंने कहा यार कहीं बुरा ना लग जाए इसको, बुरा लेगा बाद में मुझे हिसाब किताब ले लेगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा है, आप अच्छा बोलो बताओ। कहना आपको जल्दी जल्दी में मुझे बताओ कि मारिफत इमाम का क्या मतलब। मैं दिल में सोचा इसको कहूं कि यार तुम अजीब आदमी हो, तुम कह रहे हो जल्दी जल्दी में PhD कराओ मैं जा रहा, ऐसे थोड़ी होता है। मारफत इमाम एक लंबा चैप्टर है, ये कोई इस पे हदीसें होती हैं, इस पे आयतें होती हैं, इस पे बात करनी पड़ती है, मिसालें देनी पड़ती हैं, ना उठते हो ना बैठे हो और बस 1 मिनट में बताओ मैं जा रहा हूं। मैंने कहा भाई, मैं अपने दिल में सोच रहा था क्या बोलूं, जाओ भाई तुम जाओ। अचानक मेरे दिमाग में, मैंने कहा खुदा इसको बताने के लिए तू मुझे कुछ सिखाएगा, मेरे तो दिमाग में नहीं आती इसको बताने के लिए, तू सिखा दे मुझे। भाई देखो ना, मैं कहां से कमाऊं, यकीन माने अगर मुझसे कोई कहता ना इस्तखारा दे दो, मैं अगर किताब लेके हाथ में बैठ जाता हूं, खुदा से कहता हूं खुदा है तू देख रहा है यहां क्या हो रहा है, इसको हुक्म तेरा पूछना है और ये मुझसे कह रहा है मैं देख दू, मैं कहां से देख सकता हूं, तुझे इसको बताना है तो मुझे बता दे, मैं बता दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अच्छा आएगा तो अच्छा बताऊंगा, बुरा आएगा बुरा बताऊंगा, लेकिन तू खुद बता मुझे कहां से पता चलेगा, तू बताएगा तो मैं बताऊंगा ना। मेरे दिमाग में अचानक आना है खुदा का, खुदा ये जल्दी जल्दी कर रहा है इसको, तूने कुछ समझाना है तो मुझे एक जुमला दे दे, मैं इसको तू मेरा मामला खत्म हो जाए।
अचानक जहन में एक जुमला आया, अब तक खुश हूं कि मैंने उसका जवाब कबूल कर लिया था कि मैं देता हूं, तो इसको उसके बारे में मुझे कुछ सीखने को मिल गया। मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने उससे कहा, अब जरा मुझे समझ में आया, मैंने नहीं कहा होगा, अल्लाह ने शायद समझा दिया होगा। मैंने उससे कहा, मारिफत इमाम का मतलब है इमाम की पसंद नापसंद को पहचानना। मारिफत इमाम का मतलब क्या है? इमाम की पसंद और नापसंद पहचानना। जो उनको पसंद है वो करो, जो नापसंद है ना करो, ये मारिफत इमाम। और इसहाक को ऐसा मुतमईन हुआ कि हाँ मौलाना बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैं दिल में हजम है भाई, मुझे कहा आता था, मैंने कहा जवाब दिया, लेकिन तू कह रहा तो ठीक है, फिर ऐसा ही हुआ होगा, जा भाई तू अपने काम से जा, हम अपने काम से जाएंगे। लेकिन बाद में मैंने जुमले को गौर किया, मैंने देखा ये जुमला बहुत अच्छा जुमला है, ये बहुत काम का जुमला है। फिर मैंने देखा मेरी अपनी जिंदगी के लिए भी ये बहुत काम का जुमला है। जो इमाम को पसंद है वो करो, जो नहीं पसंद ना करो, खत्म। इसके ऊपर मैंने बहुत फिर कोशिश की कि इसके ऊपर मैं क्या कुछ सीख सकता हूं, तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बस इन्होंने पूछा कि खुदा और इमाम की मार्फत का मफहूम क्या है, यही मफहूम है, मैंने आपकी रिकॉग्नाइज कर दिया। अच्छा, इन्होंने आखिरी एक अजीब सवाल किया, खुदा और इमाम की मार्फत में फर्क क्या है? फर्क, हम एक अजीब सा एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, एक मिसाल इस्तेमाल करते हैं समझाने की गरज से। फर्ज फरमाइए मैंने एक गिलास उठाया, सही, ये मैंने गिलास उठाया आपके सामने, सही, मेरी उंगलियों ने उठाया या नहीं उठाया? उंगलियों ने उठाया। हाथ ने उठाया या नहीं उठाया? हाथ ने उठाया। कोहनी बाजू से उठाया या नहीं उठाया? बाजू से उठाया। मैंने उठाया नहीं उठाया? कौन सा जुमला गलत है? सब सही है ना, खुदा और इमाम भी ऐसे ही है, ये सब लेवल्स का फर्क है, बाकी सब सिलसिला एक ही सिलसिला है। खुदा है, उसका नबी है, उसका वली है, उसका वसी है। दुरूद बे मोहम्मद वाले लिखा है कि इज इट जस्ट एनफ टू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव इन अल्लाह विदाउट बीइंग अ प्रैक्टिकल मुस्लिम? अगर बिलीव नहीं है, अगर बिलीफ है और प्रैक्टिस में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? ये बिलीफ स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं है। क्यों? क्यों भाई? ये हो सकता है किसी के अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो लेकिन प्रैक्टिस में वो ना करता हो, क्या ये हो सकता है? मैं कहूंगा नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। क्यों? देखिए एक मिसाल फर्स्ट पर मैंने यहां पर कोई चीज रखी हुई है, मैंने यहां पर कोई चीज रखी हुई है और मैं कह रहा हूं जिसको जितना उठाना है उठा ले, सही है, और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये मिट्टी है, आपको समझ में आ रहा है कि ये मिट्टी है, आप उठाएंगे नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, मिट्टी उठाएगी आपको? ये भाई बैठे हुए इनको समझ में आ रहा है कि ये मिट्टी नहीं है, सोना है, उठाएंगे नहीं उठाएंगे? अच्छा, अगर इनको यकीन हो कि ये सोना है तो उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? इनका ये उठाना इनकी यकीन की गवाही दे रहा है, और दूसरों का ना उठाना वो उनके अदम यकीन की गवाही दे रहा है कि उनको यकीन नहीं हुआ। अगर यकीन होता तो उठा लेते। मैं एक सादा सी बात और करूं, ये भी एक मिसाल है, जहन में आती है। कहते हैं शेख सादी का मामला है, शेख सादी से ये हिकायत मंसूब करते हैं, मुझे नहीं मालूम वाकई शेख सादी से है या नहीं है। कहते हैं कि उनकी मां ने कहा कि जाओ आग लेकर आओ, खाना बनाना था, चूल्हा जलाना था, शेख सादी से कहा आग लेकर आओ। उसने कहा पता नहीं कहां से लाऊं, मां से दो चार सवाल किए, मां गुस्से में आ गई, उसने कहा जहन्नम से लाऊं। तो कहते हैं शेख सादी ने पलट के कहा जहन्नम में आग नहीं है, लोग यहां से लेके जाते हैं, जहन्नम में आग नहीं है, लोग यहां से लेके जाते हैं, भर भर के लेके जा रहे हैं, यहां से लेके जा रहे हैं। अब नहीं मालूम वाकई शेख सादी का किसका है, लेकिन मशहूर हिकायत उनके नाम से बाहर। अच्छा, अब मसला क्या है? लोग यहां से आग लेके जा रहे हैं। अच्छा, अगर इनको बताओ कि ये आग है तो ये करेंगे? कुरान करीम फरमाता है कुछ लोगों ने बहुत पैसा जमा किया हुआ है, क़यामत के दिन हम इनको दहका दहका करेंगे, जिस्मों पे लगाएंगे। अगर किसी को पता हो कि जो मैंने सब कुछ जमा किया हुआ ये आग है तो करेगा? जो झूठ बोलेगा, एक कानून बनाते हैं, मैं मिसाल के तौर पर इसको मजे लेने के लिए कहता हूं, जो झूठ बोलेगा उसके सर में आग लगते हैं। अगर आग लगती हो वाकई आंखों से भी नजर आती हो, लगती है आंखों से नजर नहीं आ रही है, مجھے بتا دو. لگ رہی ہے نظر نہیں آتی. اگر نظر بھی آتی ہو لوگ جھوٹ بولیں گے. یہ فرق ہے. بس اگر اسٹرانگ بلیف ہو تو پریکٹس خود بخود آئے گی. قرآن کی گواہی کیا ہے؟ قرآن کی گواہی ہے قرآن کریم نے کہیں ایک جگہ بھی ایمان کے بعد جو اگلا جملہ لکھا ہے ایسا نہیں ہوا کہ نہ لکھا ہو. ہمیشہ لکھا ہے الذین آمنوا, اگلا جملہ ہے وعملوا الصالحات. ایمان لائے اور اگلا جملہ فوراً ہے اور عمل صالح انجام دیا. اس کا مطلب ہے ایمان بغیر عمل صالح کے قرآن کی وکیبلری میں ہے ہی نہیں. صرف کیا ہے ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا. ایک آدمی سو رہا تھا کہ وہ چوری کرنے آیا, چوری کرنے آیا. عید کا دن ہے, عید کی ایام میں آپ کو ایک لطیفہ سنا رہا ہوں. کل اتنے لطیفے نہیں سنا, کل شب جمعہ ہے. صاحب وہ چوری کرنے کے لیے آیا, تھوڑی سی گھٹ پٹ گئی, اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا کون ہے؟ اچھا وہ جو چور تھا وہ اس نے سوچا اس کو کسی طرح سلانا ہے. اس نے کہا بارات جا رہی ہے, کوئی بارات جا رہی ہے, کٹپٹ وہاں سے آ رہی ہے. اچھا وہ سو گیا. پھر دوبارہ کٹپٹ ہوئی, پھر اس کی آنکھ کھلی. اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا بارات جا رہی ہے. تیسری دفعہ اٹھا, اس نے پھر کہا بارات جا رہی ہے. تو وہ جو سو رہا تھا تھوڑا تھوڑا اس کا دماغ جاگ گیا. کہنا تھا اگر بارات جا رہی ہے تو باجے کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے کہا بیٹا سو جاؤ, صبح کو آئے گی. صبح کو جب اپنا گھر خالی دیکھو گے نا تب باجے کی آواز آئے گی تمہیں. سونا ہے تو سو جاؤ, باجا مرنے کے فوراً بعد بجے گا, بہت زور سے بجے گا. ابھی جا جاؤ بھائی, ابھی جا جاؤ, ورنہ باجا تو بج رہا ہے. سن لو بس کسی طرح. اللہ کرنے والے درود بھیجے محمد و آل محمد. سوال سنیے گا. بے شک اللہ رزق دیتا ہے. اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے, وہ کچھ بھی نہ کرے اور گھر بیٹھے, کیا میں نے پانی کی مثال میں یہ تشریح نہیں کرتی تھی کہ آپ نے کام کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا, اونٹ کا پاؤں باندھو پھر توکل کرو. پہلے اونٹ کا پاؤں باندھو پھر توکل کرو, نہ کہ تم نے اونٹ کا پاؤں نہیں باندھا اور اس کے بعد کہہ رہے ہو میں نے اللہ پہ توکل کر کے آپ سے ملاقات کرنے آتا, میرا اونٹ کیوں بھاگا؟ بھائی اونٹ تو اس لیے بھاگا تم نے رسی نہیں باندھی تھی. پہلے اس کے پاؤں میں رسی باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو, پھر اس کے بعد تم اس کا نتیجہ دیکھو. بس یہ بات پہلے ہو گئی. رزق کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. آپ کو جدوجہد کرنے پہ خدا نے موظف کیا ہے, آپ کو ذمہ داری لگائی ہے. البتہ ایک باریک سا فرق ہے رزق کے پیچھے بھاگنے میں اور اللہ کی اطاعت میں پیچھے بھاگنے میں. آپ کو اور ہمیں خدا نے یہ ذمہ داری نہیں دی ہے کہ رزق کے پیچھے بھاگو. خدا نے ہم کو ایک اور ذمہ داری دی ہے. یہ بہت باریک سا ایک فرق ہے, اس کو میں اتنی جلدی میں بتا نہیں سکوں گا, لیکن میں عرض کرتا چلوں. جو خدا نے ہم کو ذمہ داری دی ہے وہ کہا ہے میری اطاعت میں زندگی گزارو, رزق میں خود پہنچاؤں گا. یہ خدا نے وعدہ کیا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس کی اطاعت کے پیچھے نہیں جا رہے. یہ ہماری غلطی ہے. اگر ہم خدا کی اطاعت کے پیچھے کوشش کریں, جد و جہد کریں, رزق وہ دے گا. قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم تم سے رزق طلب نہیں کرتے, نہ نرزقو, ہم تم کو رزق دیں گے. اور کبھی ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ اگر ہم تم سے بہت زیادہ مانگتے نا تو تم لوگوں نے دینا بھی نہیں تھا, اگر ہم تم سے مانگتے تم نے نہیں دینا تھا. تو وہ فرماتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری بندگی اور اطاعت میں جدوجہد کرو. اس کے بعد آخر میں انہوں نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا یہ کام بھی اللہ کراتا ہے؟ آخر میں لکھا ہے میرے خیال میں انسان کو محنت کرنی چاہیے. ہم آپ کے خیال کی تائید کرتے ہیں, انسان کو محنت کرنی چاہیے. اور ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بھائی آپ نے دوبارہ کیوں اس طرح سے کرنا تھا. بس کوئی مسئلہ نہیں. درود بھیجے محمد و آل
محمد.
انہوں نے سوال کیا, کہا کل سے ویوستھا تین اسٹیجز تھے, کیا ہے اور کیا نہیں ہے, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, پھر کیا کرو اور کیا نہ کرو. انہوں نے سوال یہ کیا ہے, کیا بچے کی تربیت میں تینوں چیزیں ایک ہی ٹائم پر چلانی ہے, یا پہلے تین سال پہلا پوائنٹ اگلے تین سال دوسرا پوائنٹ؟ نہیں, ایسا نہیں ہو پائے گا. آپ کو کیا کرنا ہوگا, ये नहीं कर सकते कि तीन साल तीन साल तीन साल, ये नहीं करना होगा आपको, सब चीजों को एक साथ रखना होगा। आपकी ताकीद किस पर है इस पर गौर करना होगा, आपकी ताकीद किस चीज के ऊपर है। यानी मिसाल के तौर पर यहां से शुरू करो, तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो, यहां से शुरू नहीं करो, मैं उसको पहले समझाने की कोशिश करूं, बेटा नमाज तो पढ़ो तुम, लेकिन पहले ये सोचो कि अल्लाह है भी या नहीं है, इसको आहिस्ता आहिस्ता, यानी इस इनमें एक दो तीन के तीन तीन साल की स्टेज नहीं बन सकते, करना तो एक साथ ही होता है, लेकिन इसरार ताकीद किस चीज के ऊपर है इसका फर्क बनता है, इसका फर्क बनता है कि वो स्टेजेस में लेकर चले और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के जहन को पुख्ता करने की तरफ लेकर जाए, कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के जहन के अंदर ये चीजें आना शुरू हो जाए और वो अपने काम को करना शुरू कर दे। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद इस सिलसिले में। बस एक बात और आपकी हद में करता चलूंगा, हत्ता इम्कान अपनी जिंदगी से कानून निकालने की कोशिश करें, अपनी और दूसरों की जिंदगी से कानून क्या कहते हैं। ये जो गुफ्तगू है कवानीन निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि मैं इसमें एक वाक्य और सुना देता हूं ताकि फिर इस चैप्टर क्लोज करूं। ये कवानीन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी था, एक खलीफा, उसने अपने एक आलिम को बुलाया और उससे कहा मुझे नसीहत करो, मुझे नसीहत करो। इंसानों की अच्छी सिफात में से एक यह है कि दूसरों की नसीहतों को सुने, अच्छी सिफात से सीखे। हम लोगों के साथ मुसीबत यह, हम ना नसीहत लेना चाहते ना नसीहत, क्या कहूं, देना तो खैर बड़ा ही सख्त काम, वाकई सख्त काम। नसीहत पहले मरने में ले ले इंसान, दूसरे से नसीहत ले लो, हम लोग नहीं करना चाह रहे, बहुत मुश्किल है। पर वो एक खलीफा था, उसने एक आलिम को बुलाया, उससे कहा मुझे नसीहत करो। उस आलिम ने एक अजीब सवाल किया, कहने लगा नसीहत उसमें से करूं जो मैंने पढ़ा है या उसमें से करूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो इंसान देखता है उसमें नसीहत होती है, उसमें से करूं जो मैंने पढ़ा है या उसमें से करूं जो मैंने देखा है। उसने कहा उसमें से करो जो तुमने देखा है, उस पर मेरा दिल ज्यादा असर लेगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ इसी दौर की बातें हो रही हैं। वो करो जो तुमने देखा है। क्या लगा जो देखा है उसमें से नसीहत करता हूं। क्या लगा मैंने मसलन नाम लिया उसने उमवी खलीफा का, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक मुझे याद आता है। क्या लगा मैंने उसको मरते देखा है, उसको मैंने मरते देखा है और मैंने देखा है कि उसकी औलाद को नहीं मालूम उसने कितना लिखा था, हर एक को 8 लाख दिरहम मिले थे। इस तरह उसने बताया, फिगर मेरे जहन से निकल गई है। तो उसने कहा कि मैंने फलां को मरते देखा है, उसकी इतनी औलादें थी, 11-12 बताई, इतनी औलादें थी, हर एक को 8-10 लाख 12 लाख इतने दिरहम मिले। 8-10 लाख 12 लाख कितने होते हैं, ऐसी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, 8-10 हजार दिरहम में घर बन जाता था, 8-10 हजार दिरहम में छोटा मोटा घर बन जाता था। 8-10 लाख दिरहम बहुत बड़ी रकम होती, बहुत बड़ी रकम। कहने का मैंने इसकी औलाद को देखा है, इनको इतने दिरहम मिले। फिर कहने लगा मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद को भी देखा है, उसकी हर औलाद को 8-8 या 10-10 दिरहम मिले थे। लाख हजार तो छोड़ दो, 100-100 भी नहीं, 8-8 10-10 दिरहम उनको मिले थे। कहने लगा मैंने सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की औलाद को देखा है, जो मुझे याद आता है, उसकी औलाद को इतनी औलादें थी, हर एक को 8-8 लाख 10-10 लाख दिरहम मिले थे, मैंने देखा है। मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद को भी देखा है, हर एक को 8-8 10-10 दिरहम मिले थे। फिर कहने लगा मैंने देखा है कि जिनको 8-8 लाख दिरहम मिले थे वो भी मांग रहे थे, और उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद को देखा जिनको 8-8 दिरहम मिले थे 100 घोड़े सदके करते थे। कहने लगा मैंने अपनी आंखों से देखे, तू अपनी औलाद का खैर ख्वाह है तो पहले से तय कर ले तू क्या छोड़ के जा रहा है। अगर सिर्फ पैसा छोड़ के जा रहा है तो मैंने देखा 8-8 लाख विरासत में लेने वाले भीख मांग रहे थे, और तू अगर अमल सौले छोड़कर जा रहा है तो तेरी औलाद का खुदा हाफिज है, चाहे तू 8 दिरहम छोड़ के जाए। कहने का तू सोच ले तू क्या छोड़ के जा रहा है, सौले अमल औलाद की हिफाजत करता ना कि दौलत, तुम दौलत में कुछ नहीं करना, याद से निकल जाइए, जलील भी करवाती है। ये भी बताता चलू कानून खुदा यह कहता है अगर अल्लाह की मुखालफत में कोई चीज कमाई है जलील करेगी, बहुत जलील करती है। आपको बड़ी सहमत दी साहब, बहुत वक्त हो गया लेकिन अच्छा मौका था, और इंशाअल्लाह खुदा आपके और हमारी इस तौफीक को इस सआदत को खुदा मजीद इजाफा फरमाए। اللہ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں قرآن و اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دین کی عزت اور سربلندی کے لیے جو کوئی جہاں کہیں بھی مشغول ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تیرے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں پاک پروردگار ان کی مشکلات کو برطرف فرما. جو بے روزگار ہیں مشکلات کے بارے میں قرض کے بارے میں اے پاک پروردگار اولاد کی خوشیوں کے متمنی ہیں اس عید مباہلہ اور عید غدیر کا واسطہ ہے پاک پروردگار ان کی خوشیوں کو ان کی سعادتوں کو ان کے دروازوں تک پہنچا. اے پاک پروردگار کچھ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں واقعاً کچھ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں خدا عمدہ تجھے اس سرائے کربلا کا واسطہ ان بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب کر. اے پاک پروردگار پاکستان کی سرزمین میں دنیا کے دوسرے علاقوں میں کچھ ظالم جابر درندے کچھ بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا یہ ظالم و جابر اگر قابل اسلام نہ ہو تو باسل جہنم فرما. اے پاک پروردگار دعائیں امیدیں انتجائیں تیری حجت کے لیے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیب فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین سب مل کر بآواز بلند نعرہ ہے